जय गोपी जना बल्लभा गिरिवर धारे गोपी जना बल्लभा गिरिवर धारे जसोदानंदन ब्रज जनरंजन जसोदानंदन ब्रज जनरंजन जसोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरा बनचारे जमुना तीरा बनचारे जय राधा माधव कुंज विहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद 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 प्रभु जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी जीव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे All glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Hera Panchami Maha Mahatsav ki jai. Bakreswar Pandit Tirubhav Maha Mahatsav ki jai. Om Namah Bhagavate वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नौवां स्कंद नौवां अध्याय और 33वां श्लोक पर चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है अंशुमान की वंशावली। मेरे पीछे दोहराइए। एवं करुणा भाषिन्या विलपन्त्या अनाथवा व्याघ्रः पशुम् इव आखाद सौदासः सापमोहितः एवं करुणभासिन्या विलपन्त्या अनाथवा व्याघ्रः पशुमिवाखाद सौदासः सापमोहितः एवं करुणभासिन्या विलपन्त्यानाथवा व्याघ्रः पशुमिवाखाद सौदासः सापमोहिताः एवं करुणभासिन्या विलपन्त्या अनाथव व्याघ्र पशुमिवाखाद सौदासः सापमोहिताः विलपन्त्यानाथव व्याघ्रपशुमिवाखाद सौदासः सापमोहितम् एवं करुणभासिन्या विलपन्त्यमनाथव व्याघ्रपशुमिवाखाद सुदास सापमोहित एवं करुणभासिन्य विलपन्त्यमनाथव व्याघ्रपशुमिवाखाद सौदासः सापमोहितः एवं करुणभासिन्या विलपन्त्यमनाथवत् व्याघ्रपशुमिवाखाद सौदासः सापमोहित माता जी सापमोहितः एवं इस प्रकार करुण भासिन्या करुण भाव से बोलती वो ब्राह्मणी की, वो ब्राह्मण की पत्नी बिलपंत्या बिलाप करती अनाथवा उस स्त्री के समान जिसकी कोई रक्षक न हो, व्याघ्रः बाघ पशुम पशु इवा सदृश आखादा खालिया सौदास राजा सौदास ने साप साप से मोहिता स्थापित होने से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद वशिष्ठ की साप बस राजा सौदास उस ब्राह्मण को निगल गया जिस तरह कोई बाघ अपने शिकार को निगल जाता है। यद्यपि ब्राह्मण पत्नी ने अत्यंत कातर भाव से कहा किंतु उसके विलाप से भी सौदास नहीं पसीजा, अर्थात उनकी हृदय बदला नहीं। तात्पर्य यह भाग्य का उदाहरण है। स्टेट लिखाएंगे इंग्लिश में, स्टेट और किंग। हाँ इट इज मिस्टेक। ओके ओके इस राजा राजा सौदास को राज्य लिखा। राजा सौदास को वशिष्ठ ने साप दे दिया, अतएव योग्य होते हुए भी वो व्याघ्र सदृश राक्षस बनने से अपने को रोक नहीं पाया क्योंकि यही उसके भाग्य में वादा था। तल्लभ्यते दुखम अन्यतः सुखम, भागवतम पहला स्कंद पंचम अध्याय 18वां श्लोक। जिस तरह भाग्य के द्वारा मनुष्य संकट में फंसता है उसी तरह भाग्य से वो सुख प्राप्त कर सकता है। भाग्य वा भावी अत्यंत प्रबल है किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर लिया जाए तो भाग्य को बदला जा सकती है। कर्माणि निर्धयति किंतु च भक्ति भाजम। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन सलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदन्तिकम्। वंदे अहम् श्री गुरु श्रीजुतापदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्वं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगणा ललिता श्री विशाखानितंसम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो वं विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अस्यत्यदेशतारिणे। जं प्रवजन्तम् अनुपेत्यमपेत्य कृत्यम् दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरपभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदि जदहरणं जदवंदनं जश्रवणं जदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। हरे कृष्णा। अभी नवमा स्कंध में हम प्रातःकाल पवित्र राजवंशों की चरित्र के हम श्रवण कर रहे हैं और अभी जो नवमाध्याय में ये इक्ष्वाकु वंश की राजाओं की वंशावली के वर्णन है। तो जो भगवान के महान भक्त होते हैं शुद्ध भक्त होते हैं उनकी चरित्र को श्रवण करने मात्र से ही हमारे हृदय में जन्मा जन्मांतर से इकट्ठे हुए पाप तुरंत धुल जाता है। और श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो प्रातः काल में उन राजाओं का नाम को सिर्फ स्मरण करता है वा उच्चारण करता है वो तुरंत विष्णु की पराभक्ति को प्राप्त करता है और उनकी सारी कर्म वासना नष्ट हो जाती है। तो ये जो इक्ष्वाकु वंश है जिस वंश में भगवान श्री राम का भी प्रकट्य हुआ है इसकी पहले सो महान महान राजा हुए हैं इस वंश में, लेकिन विशेष करके जो रघु जो राजा हुए हैं जिनकी कुल को भगवान श्री राम ने सबसे प्रसिद्ध बनाए रघुनाथ के नाम से विख्यात हुए, तो उस वंश में जो भगीरथ उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या किए जिनकी तपस्या के बल पर उनके सारे पूर्वजों के उद्धार हुआ और साथ साथ पवित्र गंगा नदी को इस पृथ्वी पर लाके सारे पापियों के पाप को नष्ट करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कठिन तपस्या करता है तो उनकी तपस्या को कहा जाता है भगीरथ तप, भगीरथ की तपस्या। तो ये भगीरथ के जो कार्यकलाप को आप लोग सुन चुके हैं किस प्रकार सगर वंशों के उन्होंने उद्धार किए, जो कपिल देव के प्रति अपराध किए थे सो भाइयों को पूर्वजों को उनका उद्धार करके, तो उनकी एक पुत्र हुए उनका नाम था श्रुत। तो वो भी प्रसिद्ध राजा थे, परंतु सभी राजाओं की गुणावली को वर्णन करना सुखदेव गोस्वामी के लिए 3 दिन में ये संभव नहीं था, इसलिए संक्षेप में वर्णन करके उससे जो अधिक प्रसिद्ध हैं, जिस कथा को हम सुनने से अत्यधिक कृष्ण के प्रति हमारी आकर्षण बढ़े, तो उस कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं हम। तो श्रुत का पुत्र का नाम हुआ नाभ और वे सिंधु द्वीप के राजा बने और उनका पुत्र का नाम हुआ अयुतायु और उनके पुत्र हुआ रुतपर्ण और वो रुतपर्ण जो एक प्रसिद्ध राजा युधिष्ठिर के समान धर्मविद थे, वो थे कौन? नल। महाभारत में कथा आती है नल दमयंती की कथा, तो ये नल राजा के मित्र थे और उन्होंने ये जुआ खेलने की शिक्षा नल राजा को दिए थे द्यूत क्रीड़ा। तो उनकी पुत्र का नाम हुआ सर्वकाम रुतपर्ण की, तो रुतपर्ण की पुत्र हुआ सुदास, तो सुदास के पुत्र हुए सौदास। अर्थात भगीरथ से 7 पीढ़ियों के बाद जो एक प्रसिद्ध राजा हुए उनका नाम पड़ा सौदास, व उनके एक दूसरे नाम था कलमस्वास। तो परीक्षित महाराज प्रश्न किए कि क्यों उनके नाम कलमस्पाद पड़ा, तो इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी कुलगुरु थे वशिष्ठ, एक बार मृगया करने के लिए जब सौदास जंगल गए थे तो उस समय वो जंगल में बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, ये सारे राक्षस को वो मार दिए, परंतु एक राक्षस वो उनके हाथ से छूट गया, प्राण बचा के भाग गया, परंतु वो राक्षस ने अपने भाई की मौत की बदला लेने के लिए उन्होंने अपने वेश बदला करके सौदास के घर में एक रसोइया के रूप में नियुक्त रहा कुक। एक दिन श्राद्ध के समय सौदास ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किए थे, लेकिन वो असुर की भाई जो सौदास के घर में रसोइया की कार्य कर रहा था, तो उन्होंने राजा की अज्ञानता से अनजान से उन्होंने मनुष्य की मांस पका करके वशिष्ठ जी को परोस दिए। तो वशिष्ठ जी ध्यान से अपने मंत्र बल से ये जान लिए ये मनुष्य के मांस है, परंतु वशिष्ठ जी विचार नहीं किए इस प्रकार पाप पुण्य कृत्य कौन किया है, फिर भी राजा ही इस कार्य की मूल है, तो इसलिए वशिष्ठ जी उनको साप दे दिए कि तुम मनुष्य भक्ति राक्षस बन जाओ। तो सौदास ने भयभीत हो गए इस साप को सुनकर के, तो उन्होंने अपने गुरु जी से याचना किए कि इस प्रकार प्राप्त कृत्य व अपराध ये मेरे द्वारा नहीं हुआ है, परंतु वशिष्ठ अपने सांप को आपस में नहीं ले सकते थे, परंतु सौदास इतनी क्रोधित हो गए अपने हाथ में जल उठाकर किसको अभिमंत्रित किए सांप देने के लिए, परंतु उनकी पत्नी दमयंती तो उन्होंने उनको रोक दी, ये क्या करने जा रहे हैं, अपने गुरु है ना, गुरु को इस प्रकार की सांप नहीं दी जाती है। परंतु सौदास ने जो जल को अपने मंत्र से अभिमंत्रित कर लिए थे तो इसको और दूसरे अन्यत्र स्थान में फेंक नहीं सकते थे, जहां भी फेंकेंगी सब जगह जीव है, इसलिए अपने सांप को उस जल को अपने पैर पर गिराए जिससे कि उनके नाम पड़ा कलमस्पार। तो वशिष्ठ के सांप से एक नरभक्षी राक्षस बन गए। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण जंगल में संभव करते हुए जब सौदास ने देखा तो तुरंत उनकी पेट में भूख की ज्वाला उत्पन्न हुआ और उनको खाने के लिए जब आगे बढ़ा तो इस ब्राह्मणी ने इस राक्षस जो उनके प्राप्त किया हुआ सौदास से प्रार्थना किया, अरे तुम राक्षस नहीं हो, तुम एक पवित्र राजा हो, सांप की वजह से तुमको इस प्रकार शरीर मिला है, तुम एक महान राजा हो और राजा के धर्म है अपने प्रजाओं को सुरक्षा प्रदान करना, परंतु तुम अपने राज्य की प्रजा को मारने के लिए आए हो और ये वैदिक ब्राह्मण है जो मंत्र उच्चारण के द्वारा समस्त चार वर्णों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार ब्राह्मण ना रहने पर राज्य में उत्पात अकाल आदि सृष्टि होता है, इसलिए उनको तुम मत मारो। तो उसी प्रकार उस ब्राह्मणी ने बहुत प्रकार नीति की शिक्षा दी और आखिर में ये कही, तुम देखो मैं गर्भ धारण करना चाहती हूं इसलिए मैं पति के साथ संभव कर रही हूं, इस अवस्था नहीं है मानने के लिए, और इतनी पर भी तुम यदि मेरी पति को खाने के लिए चाह करते हो तो पहले आप मुझे ही खा लो, क्योंकि ये भी एक प्रकार के ब्रह्म हत्या है, भ्रूण हत्या है। यदि पति ना रहे तो स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है, पत्नी की सुरक्षा के लिए कोई नहीं रह जाता है। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन ने भी इस प्रस्ताव को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा, स्त्री सु दृष्टा सुवस्ने या जायते वर्ण संकर संकर नरका एव कुलत नानं कुलस्य च पतंती पितरो हेसा लुप्त पिंडको क्रिया। ये महान युद्ध के परिणाम ये धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं देख रहे हैं, यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा, क्योंकि उनको लोभ ने सता लिया है, परंतु हमको वैदिक साहित्य से शास्त्र से ज्ञात है किस प्रकार यदि स्वजन की हत्या होती है तो कुल धर्म नष्ट हो जाती है। जय श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय, श्री श्री कौनिताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसलिए अर्जुन इस धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म, ये सनातन धर्म की रक्षा होता है स्त्री की सुरक्षा से, जो प्रस्ताव किया कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुल कृष्ण, तो स्त्रियां व्यभिचारिणी होने से कुल नाश हो जाता है, क्योंकि उनसे वर्ण संकर पैदा होता है और पिंड और जलदान उदक आदि क्रिया ये बंद हो जाते हैं, पितरों को नहीं मिलता है, जिससे कि अवांछित संतान से ये संसार में अधर्म फैलता है। तो अर्जुन ने इसी प्रकार भगवान के सामने ये तर्क प्रस्तुत किया कि आप धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए अवतीर्ण हुए हो, लेकिन आप इस कुल और स्वजन को बद्ध करके धर्म के नष्ट करोगे, क्योंकि एक भक्त के हृदय हमेशा ही धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म के स्थापन करने के लिए धर्म की पक्षधर होता है, और यही हमारे इस्कन मोमेंट का ही लक्ष्य है। प्रभुपाद कहते हैं, जैसे प्रभुपाद का भगवान का मिशन है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उसी प्रकार ये मिशन के लक्ष्य क्या है, धर्म की रक्षा करना और अधर्म की नष्ट करना। ये हर की ये जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, कि धर्म की रक्षा करें, और खास करके राजा, शिक्षक, गुरु और पति, ये अपने धर्म पर स्थित रहें, नहीं तो अपने अनुजायों को दाह नहीं कर सकते हैं। पति न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, स्वजनं न सस्यात्। ऋषभदेव कहते हैं, न मुच्यत यदि समुपेत्य मृत्युम। तो ब्राह्मणी ने बहुत प्रकार से अनुनय विनय करके उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी पति को जीवन दान दीजिए, मत मारिए। परंतु ये सौदास एक धार्मिक राजा होने पर भी इस प्रकार उन्होंने क्यों पाप कर्म किया, तो इसके कारण सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, साप मोहितः सौदासः साप मोहितः, कि वो साप से मोहित हो चुका था, अर्थात अपने पूर्व जन्म की स्मृति को उन्होंने खो दिया था। परंतु वो ब्राह्मणी जो अपने पति की जीवन रक्षा के लिए याचना कर रही थी, तो उनकी हालत कैसे थी, विलपंत्यः अनाथवत। अनाथ का मतलब होता है जिसकी कोई रक्षा करने वाले नहीं है, नाथ मतलब मालिक नहीं है, कहते अनाथवत। साधारणतः हम अनाथ बच्चों को क्या करते हैं, जिसके माँ बाप नहीं है उसको क्या करते हैं, अनाथ आश्रम में डाल देते हैं कि उसकी सुरक्षा दें। परंतु नाथ का अर्थ है जिनकी सुरक्षा जगन्नाथ नहीं कर रहे हैं, वह जो जगन्नाथ की, जो जगत की नाथ है, उनकी सुरक्षा पर नहीं है, वो वास्तविक अनाथ है। ये संसार में कोई किसको रक्षा नहीं कर सकता है, माता पिता वहां होने पर भी अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। अच्छा चिकित्सक और औषध होने पर भी मरीज को चिकित्सक ने रक्षा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार काल के हाल से कोई नहीं बच सकता है, कोई किसको बचा नहीं सकता है, परंतु भगवान कृष्ण हैं जो सबको जीवन दान देते हैं, राखे कृष्ण मारे के, जिसको कृष्ण सुरक्षा देते हैं उनको कोई नहीं मार सकता। परंतु हम संसार के तौर पर देखते हैं, एक दूसरे को हम सुरक्षा देते हैं, जैसे देखते हैं कि आंख की पलक आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, माता पिता अपने संतान की सुरक्षा प्रदान करते हैं, पति अपनी पत्नी की सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु ये जो सुरक्षा है, ये किसकी सुरक्षा है, शरीर की सुरक्षा। परंतु ये शरीर के द्वारा ही हम धर्म के साधन करते हैं, इसलिए शरीर को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम यदि सोचे कि हम धार्मिक पथ को अनुसरण कर रहे हैं, इस कन के साथ जुड़े हैं, तो हम सिर्फ आत्मा के विषय में सोचें, घर बार बच्चे पत्नी संतान सबको त्याग करके बस हम मंदिर में हमेशा ही रहे, तो इस प्रकार जो इच्छा है, आत्मा धर्म को जाजन करने के लिए सेंटिमेंट है। वास्तविक शरीर के बिना आत्मा की स्थिति नहीं रहता है, जैसे हम देखते हैं कि घर में मंदिर में ठाकुर जी हैं, परंतु यदि इस मंदिर को, ये दीवार को यदि हम पेंट नहीं करते हैं तो ईंट भी गिर जाएगा, तो अवश्य ही ठाकुर जी को रखने के लिए इस मंदिर के ईंट पत्थर को भी सुरक्षा देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये जो शरीर है, एक घर है, इस घर में आत्मा निवास कर रहा है, इसकी भी सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि सर्व खलु धर्म साधनम शरीरम इति, कि सारे धर्म के साधन इस शरीर से होता है, और माता पिता इसके पहला गुरु हैं, क्योंकि ये शरीर को प्रदान किए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव की बात बताते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए तो सरकार ने जो बड़े बड़े हॉस्पिटल इसकी जो निर्माण करते हैं कि इसकी कारण है कि शरीर की सुरक्षा हो। तो सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को रक्षा करना, पहले शरीर की रक्षा करके हम उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने हैं। फूड फॉर लाइफ, नॉट लाइफ फॉर फूड। हाँ, कि हम भोजन करते हैं इसलिए, हाँ, ये जीवन धारण करने के लिए, लेकिन इसके उद्देश्य नहीं है केवल खाने के लिए हम जिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो जैसे भी हो, तो दमयंती ने अपने पति के शरीर की सुरक्षा चाहती थी, और ऐसे ही वो रो रही थी, बिलपंत्य अनाथ पर। जैसे कोई बछड़ा बा बछिया की गाय मर जाए वा अपनी माँ दूर चल जाए, तो जिस प्रकार उस गाय की संतान की हालत होती है, उसी प्रकार ये दमयंती अपने पति की वियोग से इसी प्रकार उनके दुख की अनुभव हो रही थी, और बार बार हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना कर रही थी। एवं करुणा भासिन्या। करुणा कब उत्पन्न होता है? जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत दुख में है, उनके चेहरा बताता है। जैसे आपके क्या सोच विचार हो रहा है, आपका फेस नहीं, आपका आंख भी बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना? आपका आंख देख करके बता दे। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति दुख में है कि सुख में है, उसका आंख और चेहरा बताता है, फेस। इसलिए कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं करुण भासिन्या, मतलब वो जब उस राक्षस शरीर को प्राप्त किया हुआ सौदा से बोल रही थी, ऐसा नहीं कि नीति शिक्षा देने के लिए कोई आसन पर बैठ करके बोल रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे, देखो ये तुम यदि करोगे तुम्हारा यह नुकसान हो जाएगा, नहीं। बहुत विनय युक्त वाणी थी उनकी, करुणा से बोल रही थी। इसका पूर्व श्लोक में दिए हैं, जत्ययं क्रियते भक्ष्य स्त्रहिमं खाद पूर्वत। यदि आप मेरी पति को खाना चाहते हो, तो पति को खाने के पहले मैं सती हो जाती हूँ। हाँ, क्योंकि जो स्त्री अपने पति की मरने के पहले हाथ में शंखा और मस्तक पर सिंदूर धारण करके शरीर त्याग करता है, तो उच्च लोक को प्राप्त करती है। ये वैदिक नीति है, तो सौभाग्यवती होती है। कहते पति की पहले यदि कोई स्त्री शरीर त्याग करती, इसलिए दमयंती ने कह रही हैं, पूर्वतः खादमं, मुझे पहले खा लो, न जीविष्ये विनांजेनं क्षणं न मृतकं यथा, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती हूँ। और ऐसे शास्त्र में भी कहा गया है, तस्य साधार साधुर उपायस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिना। साधारण लोग भी ये जो भ्रूण हत्या आज जो कलयुग में ज्यादातर चल रहा है, अत्यधिक काम वासना से मोहित होकर के भ्रूण हत्या चल रहा है, तो ये श्रीमद् भागवतम में इस यदि हम सुने इस प्रसंग को, इसी प्रकार पाप कर्म में हमारे प्रवृत्ति नहीं होगा। ये कहते हैं कि भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं बद्धं यथा बिभ्रु मन्यते सम्मतो भवान्। कि साधारण लोग ये कार्य नहीं करते हैं, और जो साधु होते हैं वो कैसे इस कार्य को कर सकते हैं? आप सोचो, आप एक धार्मिक राजा हो, परंतु इन स्त्री की, अबला स्त्री की एक बात भी नहीं सुनी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इसके कारण क्या है ना, ये है भाग्य, क्या है, काळेन अन्यत्र गभीर रंगसा। इस समय कब किसको बदल देता है इसको जानना बहुत कठिन है, इसलिए कहते हैं समय बकाल है, सबसे बलवान है, कब किस अवस्था में किसको डालता है। इसलिए सवेरे उठकर की 3 बार काल भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य देव को देख करके, क्योंकि काल की गति उनके द्वारा ही परिवर्तित होती है। जस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र, जच्चक्षुरेषु सबिता सकल ग्रहाणं राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेज। तो वही काल भगवान स्वयं सबकी भाग्य को बदलते हैं और उनकी निर्देश में काल परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार महाभारत में प्रसंग है जब युधिष्ठिर महाराज व्यासदेव से पूछे कि हमको ये जो वनवास के जो कष्ट मिल रहा है इसके क्या कारण है, मेरे समान कोई ऐसे पापी कोई है। तो व्यासदेव ने इस नल दमयंत की कथा सुनाई, नल राजा तो इतनी धार्मिक थे, परंतु भगवान ने इनकी इतनी परीक्षा ली कि धर्म के पथ पर चलना इतनी आसानी नहीं है। पदम पदम विपदम, तो सचमुच ये धर्म की पथ को अनुसरण करना बहुत कठिन है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहाय, ये बहुत गहराई बात है, ये गूढ़ बात है, कैसे अपने धर्म को निभा सके। ये एक धार्मिक राजा है, परंतु देखिए इन्होंने कोई कुछ भी एक पाप भी नहीं किए थे, अकस्मात अपने गुरु के साथ मिला, ये कर्म नहीं, इसको हम कह सकते हैं भाग्य, जो भाग्य के निर्धारण भगवान करते हैं। तो टीच ए लेसन क्या है, ये वास्तविक हम जब ऐसे सोचे, हम जैसे कर्म करते हैं हमको ऐसा ही मिलेगा, तो सब कर्म पर आश्रित रहें। परंतु जो भाग्य, जो पंचम चीज है दैवं चैवात्र पंचम, तो उसकी प्राधान्य है। अगर यदि हम भगवान को नहीं स्वीकार नहीं करते हैं तो ये प्रकृति काल कर्म सृष्टि कुछ किसी की भी स्थिति नहीं है। परंतु जो निरीश्वरवादी होते हैं ये सब कुछ मानते हैं, अपने कर्मों को ही मानते हैं सब कुछ, इसलिए कर्म बंधन में फंसते हैं। परंतु प्रभुपाद यहां तात्पर्य में कहते हैं कि कर्माणि निर्धयति किंतु च भक्ति भाजम, जो भगवान की भाजन हो जाता है, भक्ति की भाजन हो जाता है, उसकी कर्म बंधन ऐसे ही कट जाता है। जैसे लोहे में बंधा हुआ ये चेन, हम देखते हैं कि लोहे से बंधा है, वो टाइट है, परंतु ये लोहे की चेन इतनी सूक्ष्म हो जाते हैं जैसे मकड़ी की जाल। मकड़ी के जाल में क्या स्थिति रहता है, वो हवा से फोंक से भी उड़ जाता है। इसलिए जो बड़े बंधन है ये हृदय के बंधन है। ये हृदय के बंधन क्या है, काम और क्रोध। लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने से ये जो हृदय की बंधन है जो बहुत दृढ़ता से बंधी हुई है, बहुत टाइट है, कहते भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशय, ये ग्रंथि कट जाता है। सूरज उगने पर कोहरे की कोई स्थान नहीं रहता है, बारिश होने पर कोई रास्ता में कोई कचड़ा नहीं रहता है, वो पानी से सब कुछ धुल जाता है। ऐसे कहते हैं कि हमारी आंख में यदि कोई धूल कण आ जाता है तो धूल कण कैसे निकल जाता है, अपने आप जब आंसू आ जाते हैं आंख से तो धूल कण निकल जाता है। तो उसी प्रकार जब हमारी हृदय में ऐसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, जो चैतन्य महाप्रभु कहते नयनांग गलदास्त्र धारय बदनंग गदगद हृदया घिरा। यदि आंख से भगवान के लिए आंसू बहे तो सारे कलमस दूर हो जाता है, तो कलमस पात नहीं रहेगा, पैर में क्यों कलमस रहेगा, ये सारे हृदय की कलमस खत्म हो जाता है। कलमस आप हम, जिनकी कथा श्रवण करने से क्या आता है, पूरा कलमस साफ हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भिरड़ितम कलमस आप हम। तो क्यों गुरु जी के साथ मिलेगा और क्यों आप गुरु जी के साथ देकर वो पानी को गिरा करके आप कलमस हो जाएं? क्योंकि कलमस को हरने वाला कौन है, भगवान। वो अगहारी है, अगहंता है, इसलिए स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम पाप से रहित हो, निष्पाप हो। कौन से श्लोक में भगवद गीता में? नहीं, नहीं, अर्जुन को संबोधित करते हैं कि तुम पाप रहित हो, निष्पाप, इसलिए तुम क्यों शोक कर रहे कि मैं स्वजन को मार करके मैं पाप की भागीदारी बनूं? बोलिए, छठा अध्याय में है, तात भगवान संबोधन करते हैं, तात मेरी भाई आप सुनो, तात जान ही नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही अकल्याण कृत कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। क्या आप सबकी कल्याण करने वाले हैं, आप समस्त प्रकार पाप से रहित हो, तो आपके अकल्याण नहीं हो सकता है, तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो? तो पाप करने की कुछ व्यक्ति को टेंडेंसी है, जैसे राक्षस सिंह के हैं, वो प्रवृत्ति जो कार्य करना चाहिए धर्म कार्य उसको नहीं करते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति जनानम विदुरासुर न शौचंग ना पिचाचारम न सत्यम ते सुविद्यते, असत पथ में जाते हैं। और वो नहीं जानते हैं कि भगवान इस सृष्टि के नियंता है, वो कहते अनीश्वरम जगत आहो अनीश्वरम, जगत में कोई कुछ नहीं है, हम ही मालिक हैं, आप भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूं, सब हम एक के भगवान हैं, अब जो कुछ करेंगे सब कुछ ठीक, हम ही नियंता। अरे ये संसार की सृष्टि होता है केवल काम से, अपरस्पर संभूतम कि मान्यत काम हेतु कम, काम ही जगत की सृष्टि करता है। तो वास्तविक ये जो सृजन शक्ति भगवान कहते हैं, जिसको उति कहते हैं भागवतम में, ये उति की भी प्रसंग है, कर्म वासना, ये चक्र तभी तक चलता रहता है। कितने भी आप धार्मिक बनो, जब तक आप भक्ति के पद को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये धर्म के द्वारा अपने कर्म बंधन को काट नहीं सकते हैं। इसलिए बार बार हम प्रभुपाद की हर तात्पर्य भक्ति पर आधारित है, भक्ति वेदांत प्रकट करते हैं। इसमें यही कहते हैं कि कर्माणि निर्धयति किंतु च भक्ति भाजाम, किंतु च भक्ति भाजाम, यहां पर और एक बात है कि यहां पर दमयंती व मदयंती उनके दो नाम है, दोनों नाम, तो वो अपने पति की रक्षा के लिए रो रही थी, स्वाभाविक है, अपने स्वजन संबंधी की ऐसे दुख की अवस्था है तो अपने आंख में आंसू भर जाता है, स्वाभाविक। तो बिलाप करना छोटी छोटी बात पर भी, कितनी भी बड़ी समस्या भी ना हो, लेकिन उनको जब महसूस होता है, खास करके स्त्री के हृदय बहुत सख्त होते, तो तुरंत रो पड़ती है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कोई कोई क्षत्रिय नहीं है, जैसे द्रौपदी, क्षत्रियानी की हृदय बहुत स्ट्रांग होती है, इतनी जल्दी वो परिस्थिति के साथ इतना समझौता नहीं करती है, वो लड़ती है। जब भगवान शांति दूत बन करके गए, उस समय कुंती ने नहीं रोई। कुंती ने एक बात कही थी कृष्ण से, सुन लीजिए कृष्ण, तुम शांति दूत बनकर के समझौता करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात है, जब क्षत्रियानी कोई संतान को जन्म देती हैं और जिस अर्थ पर वो गर्भधारण करती हैं और प्रसव की पीड़ा को वो सहन करती हैं, उसकी ये समय आ गया है। क्षत्रियानी अपने संतान को जिस उद्देश्य पर जन्म देती हैं, उसकी वो समय आ गया, अर्थात वो परोक्ष रूप में युद्ध के लिए ही भगवान श्री कृष्ण को प्रेरित की। द्रौपदी की जब इस प्रकार विवत्स की गई कौरव की सभा में, तो द्रौपदी ने वाल खोल के रख दी ये बदला लेने के लिए, दुशासन के ऊपर नहीं, पूरी धृतराष्ट्र के पुत्र पर। इसलिए बार बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वाल खोल करके दिखाई, ये धर्म के उल्लंघन किए हैं, क्योंकि मैं जब उस समय करुणा से सबको पुकारी, मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी, सब बड़े बड़े धार्मिक नेता थे, भीष्मा, द्रोण, कृपाचार्य और बड़े बड़े महानुभाव थे, परंतु कोई एक भी इसके प्रतिवाद नहीं किए। जिस समय भीष्म देव ने बाण की सज्जा पर लेटे लेटे युधिष्ठिर महाराज को ये धर्म की शिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो द्रौपदी ने प्रतिवाद की, वह व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म की शिक्षा दी, जिन्होंने भूरी सभा में एक अवर्णा स्त्री की लाज नहीं रक्षा कर पाए, तो वो कैसे धर्म की शिक्षा दे सकते, प्रतिवाद भी नहीं किए। परंतु भीष्मदेव ने कहे, बेटी तुम ठीक कह रही हो कि मनुष्य की मति जब दूषित हो जाता है तो धर्म अधर्म के विचार नहीं रहता है, और मैं दुर्योधन की दूषित अन्न से मेरी मति, मेरी खून दूषित हो गया था, इसलिए धर्म को जानने पर भी मैं धर्म के पक्षधर नहीं बन पाए। परंतु बेटी आज लगभग 23 दिन हो चुका है युद्ध के उपरांत, 10 दिन में सॉरी 13 दिन हो चुका था, तो भगवान जब युधिष्ठिर महाराज को लेके अपने भाइयों के साथ खड़ा किए वहां धर्म उपदेश सुनने के लिए, उनके मोह को दूर करने के लिए, तो भीष्म देव कह रहे हैं कि सारे मोह उत्पन्न करने वाले वही हैं, वही खड़े हैं सामने, वो जिसको ऐसे विमल बुद्धि प्रदान करते हैं वही धर्म के रहस्य को जान सकते हैं। धर्मस्य क्या कहते हैं, रहस्यम, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजन जैन गतस्य पंथ, कहते गुह्य विषय तो वही जानते हैं, और हम लोग सिर्फ महाजन हैं, उनकी पद को अनुसरण करके हम महान बने हैं, परंतु वो सब धर्म के आधार। तो ये स्टेटमेंट द्रौपदी का अच्छे लगे। प्रश्न है तो सुरक्षा के लिए याचना करना, जैसे बच्चों के आंख में आंसू, तो स्त्रियों की आंख में भी उसी प्रकार आंसू बहती है। तो इसलिए मदयंती रो रही थी, प्रार्थना के साथ क्या है, करुण्य भासिना विलपंत्या, हाँ बहुत करुणा से बोल रही थी और रो रही थी। इसलिए सुख दुख की खोज हम दूसरे से याचना करने पर नहीं मिलता है, इसकी वास्तविक प्राप्ति होता है भगवान की पास प्रार्थना करने पर। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम सबको सिखाए कि कैसे भगवान के शरण में जाए। सो पार्षद सोय धाम सहा बतारी, सिखा शरणागति भकतर प्राण। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए किस प्रकार भगवान के ऊपर निर्भर रहा जाए, तो स्वयं इसको आचरण किए, कंबेरा में रहे और रो रहे थे। जो हम रोना अपने जीवन की सुरक्षा के लिए व स्वजन संबंधियों की सुरक्षा के लिए हम दूसरे से ही करते हैं, वही रोना हम भगवान के पास करना चाहिए। यदि जल नाले में मिलता है तो कोई लाभ नहीं होता है, लेकिन वो जल को यदि हम गंगा जल में मिला देते हैं, गंगा नदी में, तो वो भी गंगा जल हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। तो वही आंसू यदि भगवान के चरण कमल में पड़ता है तो ये आंसू ये नमकीन नहीं रहता है, ये चरणामृत हो जाता है। बड़े बड़े भक्त रो करके भगवान के चरण को अभिषेक किए। जनकपुरी में जब गए थे बहुला से और श्रुतक वही आंसू बहाए, लेकिन भगवान की चरण को अभिषेक करके वो चरणामृत प्राप्त किए। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अलग अलग पार्षदों को अलग अलग भक्ति प्रदान किए हैं। किसको सिखाए, भाई कीर्तन करो, किसको कहे कि तुम नृत्य करो, किसको भक्तों को प्रसाद खिलाओ। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने भक्ति रस को अलग अलग प्रकार के वितरण किए। तो उनकी अन्यतम एक पार्षद हैं जिनके आज तिरुभाव तिथि है, बक्रेश्वर पंडित। तो ये स्वयं श्री कृष्ण की नित्य कलेवर हैं, बक्रेश्वर पंडित प्रभुरा पूर्ण शक्ति। ये बक्रेश्वर पंडित भगवान श्री कृष्ण व चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण शक्ति हैं। से ही कृष्ण पाए जे तहार करे भक्ति, जो उनकी आराधना करता है तो निश्चित कृष्ण भक्ति प्राप्त होता है। देखिए आराधना हमारा ध्यान को आरत आगे करना है, पास में रखना है, किसके पास, भगवान के पास, जिसको हम कहते उपासना। तो दो प्रकार के आराधना व उपासना है, एक है भगवान और दूसरा आराधना है भक्त। स्वयं महाजन के रूप में वैष्णव श्रेष्ठ शिव जी अपने पत्नी से कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु आराधना, परंतु उससे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना। तस्मात परतरम देवी तदीय नाम समार्चे, उनकी तदीय वस्तु। तो उनकी तदीय व भगवान के निजे लोगों की आराधना, भक्तों की कैसे आराधना किया जाए, तो ये पद्धति को सीखना चाहिए। जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं तो पुजारी को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, किस प्रकार मंत्र उच्चारण करना है, किस प्रकार भोग लगाना है, किस प्रकार वस्त्र पहनाना है, तो सब प्रकार विधि भी सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार वैष्णव आराधना के लिए भी हमको विधि सीखना चाहिए, क्योंकि वैष्णव किसके आराध्य है, भगवान के। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी तीन बार गायत्री करता हूं, हम जैसे गायत्री करते हैं, त्रिसंध्या करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, तो भगवान भी कहते हैं मैं भी द्वारका में तीन तीन बार ध्यान लगाता हूं, किसकी, भक्तों की, मैं भी ध्यान करता हूं मेरी भक्तों की, तीन संध्या करता हूं उनके नाम में, मैं सात गायत्री भी करता हूं। क्यों ना, वो जैसे मुझे हृदय में धारण किए हैं मैं भी उनको हृदय में धारण करता हूं। साधवम हृदयम तोहम, मैं साधु के हृदय में हूँ और साधु मुझे हृदय में रखता है। मदन्यंत न जानन्ति नाहं तेभ्य मनाकप, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं जानते, तो मैं भी कैसे करूं, मैं भी उनके अलावा और कुछ नहीं जानता मेरे भक्तों के। इसलिए जो भक्तों की भक्ति करता है तो भगवान कहते मैं उनको भक्ति दे देता हूं, मैं अपने स्वयं को दे देता हूं। इसलिए तदी अनांग समार्जित तस्मात परतरम, इसलिए भक्तों की सेवा करना व उनकी आराधना करना वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम गायत्री करने के पहले, कृष्ण को चिंतन करने के पहले हम गुरु गायत्री करते हैं, गुरु को चिंतन करते हैं। सही कृष्ण पाए जे तहारा करे भक्ति, हमको क्यों भक्ति मिलेगा, क्योंकि उनके घर में स्टोरेज से है भक्ति, साधु की हृदय रूपी घर में भक्ति भरा हुआ है, वो सप्लाई देते ले लो, वो होलसेल लीलर है। कृष्ण से तुमार, कृष्ण दिते पार, तुम्हारी सकत ही अच्छी, बक्रेश्वर हृदय कृष्ण र निज घर, भगवान के रेसिडेंस कहां पर है, वैकुंठ नहीं है, गोलक वृंदावन नहीं है, सचमुच उनकी असली रेसिडेंस कहां है, साधु की हृदय। इसलिए साधु की हृदय में भगवान नित्य निरंतर निवास करते हैं, वैकुंठ को छोड़ के चल जाते हैं, जैसे रथ यात्रा के समय नीलांचल में रह रहे कि थक गया रे, कितनी भूख खाते रहूं, हाँ इतनी ऐश्वर्य मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो थोड़ा घूम के आते, तो वैकुंठ को छोड़ के भी चल जाते हैं, लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती है, परंतु साधु के हृदय को एक मुहूर्त के लिए भगवान नहीं छोड़ते हैं। मनाक मतलब एक मुहूर्त, एक निमिष मैं नहीं छोड़ता। वक्रेश्वर हृदय कृष्ण र निज घर, कृष्ण नृत्य करे ना नाचिते वक्रेश्वर, जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे तो भगवान श्री कृष्ण उनकी हृदय में भी नृत्य शुरू कर देते थे। आप लोग सुने होंगे पहले कथा, एक गौरीदास पंडित के शिष्य थे चैतन्य दास, तो उनको जब गुरुजी ने निकाल दिए, कहे कि तुम मेरा बिना अनुमति से तुम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाए, तुम निकल जाओ यहां से, गुरु की आज्ञा को नहीं सुनते हुए उनसे आज्ञा की मांगते नहीं हो, तो क्या करे बेचारा चैतन्य दास, निकल गए, परंतु उनकी अनुराग गौर निताय के प्रति है। प्रतिदिन गंगा तट में बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके वैष्णव के साथ बहुत आनंद विवर होकर के नृत्य करता था। इनकी नृत्य और कीर्तन इतनी आकर्षक था, गौरदास पंडित के निज विग्रह गौर निताय, ये भी दोपहर के समय जब सुला करके गौरदास पंडित विश्राम करते थे, ये दोनों भाई भाग जाते थे उनके नृत्य में भाग लेने के लिए। एक बार गौरदास पंडित ने घर ठाकुर घर खोल करके देखा, दो भाई है नहीं, गुस्सा आया, ये दोनों छोड़ के चल गए, मैं उनको सुला के गया था, तो चार तरफ ढूंढने लगे, हाथ में लिए एक लाठी और देखे कहां, वही अपने शिष्य की गान बजान में मस्त है, दोनों झूम रहे नाच रहे। तो गौरदास पंडित के हाथ में जब छड़ी देख लिए तो दोनों भाई डर की भाग गए, नित्यानंद तो पेड़ के नीचे कहां छिप गए, लेकिन चैतन्य ने ढूंढे मैं कहां छिप जाऊं, नहीं तो पिटाई पड़ेगा हमारे ऊपर, तो तुरंत उस भक्त के हृदय में घुस गए। तो ये दृश्य देख रहे हैं उनकी गुरुजी, ये क्या हुआ, साकेत उनकी हृदय में प्रवेश कर गए, और बाद में उनकी गुरुजी उनके नाम फिर दीक्षा नाम दे क्या, हृदय चैतन्य। तो इसी प्रकार वक्रेश्वर पंडित के हृदय में भगवान हमेशा ही नृत्य करते थे, और कितना, 24 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा होता है,
अर्थात 72 आवर्स एक साथ कंटिन्यूअसली हम मंगल आरती में थोड़े समय जब जोर कीर्तन होता है 10-15 मिनट थोड़ा झूमते हैं, वह गुरु पूजा में झूमते हैं संध्या आरती में, ऐसा तो नहीं कि हम 24 घंटा नृत्य करते हैं। सिर्फ खड़ा रहे ना एक दो घंटा हाँ हमारा घुटना दर्द करता है, बैठ जाता है। आप सोचिए उन्होंने 72 आवर्स 72 घंटा नृत्य करते थे। चैतन्य महाप्रभु के जहां कीर्तन होता था नित्यानंद प्रभु और वक्रेश्वर पंडित ही प्रसिद्ध नृत्य करने वाले थे, इसलिए नित्यानंद नर्तन और वक्रेश्वर के नर्तन, राघव और सची माता की रंधर और श्रीवास की अंगल, यहां पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा ही नित्य विराजमान करते हैं। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर प्रिय भृत्य एक भावे चविसी प्रहर जाए नृत्य, एक साथ नॉन स्टॉप नृत्य। आपने महाप्रभु गायन जार नृत्य काले प्रभुर चरण धरे वक्रेश्वर बोले। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते हैं तो उनकी कीर्तन की ताल के साथ वक्रेश्वर की नृत्य और वहां नित्यानंद प्रभु का नृत्य मैचिंग होता है और किसी के नहीं। जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु 7 मंडली बना करके कीर्तन के साथ नृत्य करते थे, विशेष करके जहां नित्यानंद प्रभु और वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते थे उनके सामने भावावेश से सबको ये दृष्टिगोचर नहीं होता था कि 7 रूप में चैतन्य महाप्रभु सभी मंडली में है। परंतु जब वक्रेश्वर के सामने और नित्यानंद के सामने चित्र में भी देख सकते हैं कि जब नृत्य कीर्तन के उल्लास का अनुभव करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद और वक्रेश्वर पंडित के संगति लाभ करके, और वक्रेश्वर पंडित ही चैतन्य महाप्रभु के पहले शिष्य हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्म से लेकर की सारी लीला, खास करके चैतन्य महाप्रभु जब अपने संकीर्तन प्रारंभ किए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में, उस समय भी पहले इनवाइटेड डिवोटी थे वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने के लिए। सेकंड जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए उस समय भी वक्रेश्वर पंडित उनके साथ थे, और फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के नीलांचल से जब अद्वैत आचार्य के घर में आए उस समय भी वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के साथ नृत्य किए थे। और जब रामकली में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से मिले थे, कन्हाई नाटशाला तक जब गए थे उस समय भी वो वक्रेश्वर पंडित उनके साथ थे, अर्थात चैतन्य महाप्रभु की भी नित्य संगी हैं वक्रेश्वर पंडित, वो कभी उनके संग छोड़ते नहीं है। लेकिन एक बार वक्रेश्वर पंडित वो कौन सा स्थान है जो गौड़िया मठ है जहां देवानंद पंडित का उद्धार हुआ था कोलादेव, स्थान का नाम क्या है, हाँ अपराध पंजा, जो देवानंद पंडित भागवतम बोलते थे तो सभी बड़े बड़े विद्वान आश्चर्य हो जाते थे, अरे कितने विद्वान है, देवानंद पंडित उनका नाम था, भागवतम व्याख्या बहुत प्रकार करते थे। लेकिन एक बार श्रीवास पंडित उनकी भागवतम की कथा उनके शिष्यों के गहन में बीच में सुने बैठ गए, तो श्रीवास पंडित तो नारद जी के स्वयं अवतार हैं, भक्ति की एकमात्र स्वरूप है, तो भागवतम की श्लोकों को सुनकर के उनके हृदय में अष्टसात्विक भाव उत्पन्न हुआ, आंख से आंसू, शरीर में कंपन, रोमांस। परंतु ये जो शुष्क ज्ञानी हैं, ये भक्तों के भाव को नहीं समझ पाते हैं, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। तो श्रीवास देवानंद पंडित के जो शिष्य थे ये सोचे ये एक भावुक है, ये भागवतम की जो श्लोकों के अर्थ कितने गहराई है, ये रो रहा है, ये तो समझना चाहिए ना तत्व विचार से, ये तो सेंटिमेंट है, इसको उठा करके बाहर फेंक दी। परंतु देवानंद पंडित देखते हुए कुछ बोले नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, बाल्य लीला कर रहे थे, गंगा स्नान करके जब लौटते थे, तो देवानंद पंडित को जब भेंट हो जाता था गंगा के तट पर, नहीं तो अपने पाठशाला में, तो हमेशा डांटते थे, तुम क्या भागवत पढ़ाते हो, तुमको भागवतम के एक अक्षर भी पता नहीं है, तुम छोड़ दो ये कार्य, तुम मूर्ख हो। परंतु देवानंद पंडित एक भी कुछ नहीं बोलते थे, महाप्रभु जवाब नहीं देते थे। लेकिन महाप्रभु बहुत क्रोध करते थे उनके पर, क्योंकि उनके भक्त के प्रति ऐसे अपराध हुआ है। परंतु यही देवानंद पंडित वो कोलादीप है ना, कोलादीप, कोलादीप में जब चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन किए, तो वक्रेश्वर पंडित भाव विहोर होकर के इतने नृत्य कीर्तन किए, तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। तो उस समय देवानंद पंडित ने सब लोगों को हटाए कि उनके ऊपर कोई न गिर जाए, उनको रक्षा करने के लिए चार तरफ सारे लोगों को लगा दिए बचाओ। और जब वक्रेश्वर पंडित के चरण को स्पर्श किए, तो देवानंद पंडित की सारी अपराध सब धुल गए। तो महाप्रभु देखे कि मेरी भक्त की सेवा करने से किस प्रकार व्यक्ति समस्त प्रकार के अपराध से मुक्त हो जाता है, और उसी समय वो भक्ति की पात्र को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। तो उसी समय महाप्रभु उनको अपने अनुयायी के रूप में स्वीकार किया। हरि स्थाने अपराध है हरे हरे नाम, तुम्हार स्थाने अपराध है नहीं का एड़ा। भगवान की पाद सेवा में यदि कोई अपराध होता है तो हरिनाम करने से अपराध दूर होता है, परंतु भक्तों के पास इस प्रकार हरिनाम करने से नहीं, स्वयं उनकी पास जाकर के उनकी सेवा करने से यह अपराध मिटता है। और जहां तक कि हमारे मन में किसी वैष्णव के प्रति अपराध की भावना है, तब तक हम अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं कर सकते हैं। आराध्य भगवान ब्रजे सतन है। तो महाप्रभु बहुत कठोर हैं और बहुत ही सरल हैं। वो सबको मुक्त हस्त में भक्ति वितरण कर रहे हैं, परंतु जो अपने भक्तों के अपराधी हैं, चाहे उनकी मां क्यों ना हो, सची माता क्यों ना हो, फिर भी उन्होंने वो प्रेम नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किए थे। तो जो अपराध भंजन स्थान, जो देवानंद पंडित की जो अपराध थी श्रीवास पंडित के प्रति, तो ये वक्रेश्वर पंडित की सेवा करने से उनकी भाव दूर हो गया, और तब से उन्होंने सारी वैष्णव की सेवा करने लगे। तो ये जो वक्रेश्वर पंडित हैं, और जो अभी जो गुंडीचा मार्जना हुआ, तो गुंडीचा मार्जना में जो चैतन्य महाप्रभु कहते थे, देखो आप तो बहुत साफ कर दिए। जब गुंडीचा मार्जना होता था तो चैतन्य महाप्रभु सबको प्रोत्साहित करते थे, प्रशंसा करते थे, देखो आप बहुत साफ किए हैं, क्योंकि आपकी हृदय इतनी ही साफ हो गया और कृष्ण स्वयं जगन्नाथ के रूप में आकर के आपके हृदय में विराजमान होंगे, तो सबको उत्साहित करते थे। परंतु सारे भक्त मिलकर के जितनी साप करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उससे 100 गुना अकेला ही साप करके कूड़ा करकट इकट्ठा करते थे। तो सारे भक्त जब देखे कि महाप्रभु तो ज्यादा करते हैं लेकिन हमको झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये वक्रेश्वर पंडित ये कहे कि नहीं, हम गुंडीचा की मार्जना नहीं करेंगे, हम तो मार्जना करेंगे ये चरण कमल के। ऐसा सोच करके उन्होंने सारे जो घड़ा में पानी ला करके चैतन्य महाप्रभु के चरण में डाल करके बस सभी भक्तों को प्रसाद किए, अभिषेक करो और चरणामृत लेकर के पियो। महाप्रभु कह रहे, अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गई क्या? अरे भगवान के अभिषेक करना चाहिए, मेरी सबका चुप हो जाओ। हाँ चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, साक्षात जगन्नाथ हैं आप, तो महाप्रभु चुप, ये बात बोलना नहीं। तो सबको डांटे, लेकिन अंदर से प्रीति रख करके सबको ये चरणामृत लुटने का सौभाग्य दिए। किसके कारण? बकरेश्वर पंडित के कारण। और जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को जब उनके अंतिम प्रयाण हुआ, हाथ में लेकर के नृत्य कर रहे थे, तो ये वक्रेश्वर पंडित तो चैतन्य महाप्रभु की जो दुख है कि हरिदास अभी ये धराधाम को छोड़ रहे हैं, मैं इनके संग के बिना कैसे रह सकता हूं। लेकिन वक्रेश्वर पंडित ऐसे कृष्ण विरह भक्तों के विरह में ऐसे भावना से नृत्य किए, तो चैतन्य महाप्रभु शांति के अनुभव किए कि हरिदास ठाकुर के प्रयाण होने के बाद अंत में जो उनकी दुख और पीड़ा थी, दो प्रकार के सुख होता है जब भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं। एक तो होता है कि वो जाकर के भगवान की सेवा में जुक्त होते हैं, इसलिए सुख मिलता है, और दुख होता है कि हमको उनकी डायरेक्ट संग प्राप्त नहीं होता। तो महाप्रभु की जो दुख था उसको बकरेश्वर पंडित नृत्य के द्वारा दूर किए। और ये जो बकरेश्वर पंडित आज के दिन जो इसको हम कहते हैं हेरा पंचमी, तो हेरा पंचमी के दिन उन्होंने नृत्य करते करते ही ये शरीर त्याग किए भावावेश। आप सोचिए तो उनकी आइडेंटिटी क्या हो सकता है, तो गोलोक वृंदावन में उनकी आइडेंटिटी क्या है, तो तुंग विद्या जो नृत्य कला में विशारद है। कृष्णा वैसे है जन्य तेनहं प्रभंग मुखम मजी जनत, एकदम मस्त हो जाते हैं। हमारी भी एक भक्त हैं, कोई भी मंदिर में जाते हैं, कीर्तन चले कुछ भी हो, वो नृत्य करते रहते हैं। क्या भक्त बता रहे हो, वो हमेशा नृत्य, लेकिन वो सो जाते हैं कभी कभी एक दो घंटा। जब भी शंख बजता है मंगल आरती, यदि बेड पर उनको सुनाई पड़ा तो वहां से वो घूम घूम के नृत्य करना शुरू करते हैं अपने बेड पर। उनका ये सिद्धि भी हो गया है। लेकिन बकरेश्वर पंडित वो कंटिन्यूअसली 72 घंटा तक नृत्य करते थे। और ये धराधाम में, धराधाम से वो आज के दिन आषाढ़, ये कृष्ण पंचमी के दिन, हेरा पंचमी जिसको कहते हैं, इस दिन वो अप्रकट हो गए। और ये जो कृष्ण की जो व्यूह रचना होता है संकर्षण, संकर्षण के बाद मूल संकर्षण से फिर वासुदेव, अनिरोध और प्रद्युम्न, ये चार व्यूह में ये जो वक्रेश्वर पंडित हैं ये है अनिरुद्ध। इसके बाद फिर चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह इसमें जो अनिरोध के स्वरूप है, अनिरोध कौन है, प्रद्युम्न की पुत्र उषा के साथ जिनकी विवाह हुई थी, बनासुर की पुत्री और दुर्योधन की पुत्री है ना, लक्ष्मणा के साथ अनिरोध की विवाह। तो ये बकरेश्वर पंडित वास्तविक उनके स्वरूप क्या है, नृत्य कला दिशारथ, भगवान को नृत्य के द्वारा आनंद प्रदान करना गोलोक वृंदावन में। तो आज भी हेरा पंचमी है, तो विशेष चीज इसको कहते हैं लक्ष्मी विजय। हेरा का मतलब है देखना, नयन हेरिब अमी जुगल रूप हेरा। तो आज से, आज कितना दिन हुआ, पंचमा दिन रथ गया, तो जगन्नाथ जब निकाल के गए कहे कि मैं बीमार पड़ा था, थोड़ा से मुझे खुला हवा चाहिए, रिलैक्स थोड़ा चाहिए, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। तो लक्ष्मी जी कहे मुझे लेके चलो, कहते तो नहीं तुम थोड़ा रह जाओ इधर, मैं भाई के साथ चलता हूँ। कहते तो अच्छा तुम्हारा भाई बहन है अपने आलोक, मैं पत्नी नहीं हूँ। तो गुस्सा हो गए और जगन्नाथ जब निकल गए तो दरवाजा बंद कर दिया। तो रथ यात्रा के समय जो बाहर निकल के आ जाते हैं जगन्नाथ बलदेव, तो देखो वो मैन सिंह दरवाजा बंद कर देते हैं लक्ष्मी देवी गुस्सा से। तो जगन्नाथ कहे देखो गुस्सा मत करो, मैं 3 दिन में आपस लौट करके आ जाऊंगा, 3 दिन के बाद। तो लक्ष्मी देवी ने गिने, पहला दिन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अरे ये देखो मेरे साथ तो धोखा किया है। तो ऐसे लक्ष्मी सोचकर की एक गांव है, उसका नाम है हेरा गांव। तो लक्ष्मी देवी की सारी वहां सहचरी रहती हैं, कहते चलो ये धोखाबाज को कुछ दंड देना चाहिए। तो उस हेरा गांव से अपने सखियों के साथ जाकर की वो क्या करती हैं, अभिमान से वो जगन्नाथ जी की नंदीघोष रथ को तोड़ देती है और जितनी सब जगन्नाथ की सब सेवक है ये सबको बंदी बनाती है, जो पंडे हैं इधर आओ। तो ये लीला चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय स्वरूप दामोदर के साथ देखते थे। तो महाप्रभु कहते अरे ये कैसा है कि कोई स्त्री अपने पति को ही नियंत्रण करती है, डांटती है, मैं तो कभी नहीं देखा, ये तो एक अद्भुत लीला है। और साक्षात लक्ष्मी जी जो अपने मर्यादा में ही रहती हैं। तो स्वरूप दामोदर कहते हाँ ये तो एक विशिष्ट लीला है, आप तो रहस्य आप सब कुछ जानते। तो महाप्रकृत नहीं नहीं तुम थोड़ा बताओ, क्योंकि वो ललिता सखी है, तुम बताओ इसके लीला। तो फिर वो कथा कहते कि लक्ष्मी देवी वो इसलिए मान करके जाती है कि मैं विराट लीला में भाग लूं, लेकिन भगवान कहते नहीं इस प्रकार अभिमान से आप वृंदावन नहीं आ सकते, वृंदावन में आ गए परंतु मेरे रास लीला में भाग नहीं रह सकते, वो तो सिर्फ गोपियों के अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान है, तुमको यदि रास लीला में भाग लेना है तो गोपियों जैसे कार्य करना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा, गोदोहन करना पड़ेगा, दही पिलोना करना पड़ेगा, सिर पर उठा के नहीं, ये नहीं कर सकता मैं लक्ष्मी हूं। तब फिर आप बैठ जाओ, रासलीला में आना नहीं। तो अभी तक भी लक्ष्मी जी वेल वन में तपस्या कर रही है रासलीला में आने के लिए, फिर भी उनको एंट्री कार्ड नहीं मिला है, आ जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु कौन सा भट्ट, रघुनाथ भट्ट की पिता वेंकट भट्ट के साथ ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि देखो तुम्हारे आराध्य तो लक्ष्मी नारायण है, परंतु तुम्हारे लक्ष्मी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने पत्नी को पति को क्यों छोड़ दिए। तो वेंकट भट्ट ने कहा तो कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है। तो वेंकट भट्ट बोले कि देखो वही गोपियां तो रासलीला से भगवान श्री कृष्ण छोड़कर के गए, तो भगवान चार रूप में चार भुजा में प्रकट हो गए, हाँ चतुर्भुज रूप में नारायण बन करके, लेकिन गोपियां तो उनको पसंद नहीं किए, वो तो कहे कि हमारे कृष्ण कहाँ है, वो कहे नहीं कि आपको हम कितने ढूंढ रहे थे आप यहीं छिप करके थे, वो गोपियां नहीं कहे, गोपियां उनसे पूछे कि हमारी प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहाँ है, तो क्या भाव है। तो वेंकट भट्ट कुछ उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि अपने सती लक्ष्मी है परंतु वो अपने पति को क्यों छोड़ करके कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए, कृष्ण को क्यों पति रूप में बनाने के लिए चाह करती है। तो इसकी यही रहस्य है कि जो रास लीला है ये जगत के हर प्राणियों को ही आकर्षित करता है, लेकिन ये इस रस को प्राप्त करने के लिए ये क्या चाहिए, रागानुग बनना पड़ेगा। जय जय जल रस सर्व रस सार परकिया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। तो ब्रजवासियों की संगति करने से, ब्रजभाव को ग्रहण करने से इस रास को प्राप्त कर सकते। इसलिए लक्ष्मी जी निराश होकर के आई, रथ को तो तोड़ दिए, जगन्नाथ के सेवक को बंदी बनाए, परंतु जगन्नाथ ने कहे ठीक है तुम नाराज मत हो, मैं और चार दिन के बाद लौट के आ जाऊंगा, थोड़ा से हमको अच्छा लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं था, बिगड़ गया था, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तुम जाओ नाराज मत। तो फिर जब भगवान जो उल्टी यात्रा में चार दिन के बाद जो लौटेंगे, तो लक्ष्मी उनको रिसेप्शन करने के लिए आती है, लेकिन कैसे, एकदम थाट बाट में पालकी पर वेट करके गहना पहन करके आती है, और ठाकुर जी को क्या करती है, कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, फट्टी पुराने वस्त्र पीताम्बर पहन चल गए, मेरे साथ रहना है तुमको ऐसे मेरे जैसे ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो इसलिए जगन्नाथ जी को कौन सा वेश किया जाता है, सोना वेश किया जाता है पहरा ऐश्वर्य। तो लक्ष्मी जी को ऐसा लगता है। तो ये जो है हेरा पंचमी वो रात को होता है, तो ये भी साल में एक बार आती है, ये जगन्नाथ के आनंद के लिए और ऐश्वर्य भाव की रस। तो जगन्नाथ भी वहां पर वृंदावन में रह करके भी आस्वादन करते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी को बैठा दिए। बेलबन में तुम बैठो, तुम्हारी अभिमान, तुम्हारा जो गाली गलौज है मैं यहाँ भी वृंदावन में बैठ करके सुनूंगा। तो ये वृंदावन है जो गुंडीचा मंदिर है, तो वहां पर रहकर एक भी स्त्री की गाली उनको कैसा लगता है, वेद स्तुति हैते सही हरे मर मन। तो लक्ष्मी जी की गाली भी उनको आनंद लगता है, ठीक है गाली दो लेकिन आपके साथ में नहीं जाऊंगा। लेकिन देख करके एक बार लक्ष्मी जी आ जाती हैं, इसलिए इसकी कहा जाता है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी महा महोत्सव की जय। वक्रेश्वर पंडित तिरुभा महा महोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्णा।